एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम गोता लगा रहे हैं अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे कोने में जहां धूप तो बहुत तेज है पर परछाइयां उतनी ही गहरी, और नैतिकता, खैर वो तो एक धुंधली सी चीज है। हम बात करें रेमंड चैंडलर के 1939 के क्लासिक उपन्यास द बिग स्लीप की।
हाँ, द बिग स्लीप, वो उपन्यास जिसने न सिर्फ हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन को एक नया आयाम दिया कह सकते हैं, बल्कि हमें फिलिप मार्लो से भी मिलवाया, वो जासूस जो शायद आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव का सबसे जाना पहचाना चेहरा है।
बिल्कुल, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि कहानी की उस भूल भुलैया में थोड़ा उतरें, किरदारों के नकाबों के पीछे झांकने की कोशिश करें और समझें कि चैंडलर का ये उपन्यास आज भी क्यों इतना असरदार लगता है। सवाल यही है कि 1930 के दशक का वो लॉस एंजलिस जो ऊपर से इतना चमकदार था पर अंदर से शायद खोखला, क्या उसमें एक ईमानदार आदमी अपना रास्ता खोज सकता है?
ये बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया आपने, क्योंकि चैंडलर ने उस दौर के लॉस एंजलिस को पकड़ा भी खूब था। एक तरफ वो हॉलीवुड की चकाचौंध, दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार का अंधेरा, और यहीं से वो नॉर शैली उभरती है ना।
हाँ बिल्कुल,
जहाँ माहौल वो निराशा का भाव
और सही गलत का जो धुंधलका है।
हाँ, वो कहानी का जैसे बहुत अहम हिस्सा बन जाता है।
सही कहा, चैंडलर ने जिसे लोग पल्प फिक्शन कहते थे उसे एक साहित्यिक गहराई दी। उनका मानना था, और उन्होंने लिखा भी, कि कहानी के केंद्र में एक ऐसा नायक होना चाहिए जो खुद दागदार ना हो, जो डरे नहीं। हाँ, वो उनकी मशहूर लाइन है, इन तंग गलियों से एक ऐसे आदमी को गुजरना होगा जो खुद कमीना ना हो, और फिलिप मार्लो वो वही आदमी है।
और मजे की बात यह है, कहानी का प्लॉट इतना इतना पेचीदा है कि जब हॉवर्ड हॉक्स इसकी फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने चैंडलर से पूछा कि भाई ये बताओ, शॉफर ओवेन टेलर को मारा किसने था?
अच्छा,
तो चैंडलर ने क्या कहा?
चैंडलर का जवाब था, मुझे खुद नहीं पता।
तो शायद उनके लिए प्लॉट से ज्यादा जरूरी वो माहौल था, वो किरदार थे, वो एहसास था।
तो चलिए फिर उसी माहौल और किरदारों की दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक उमस भरे दिन लॉस एंजलिस के एक आलीशान बंगले के ग्रीन हाउस में।
हाँ, वो ग्रीन हाउस।
प्राइवेट जासूस फिलिप मार्लो को जनरल स्टर्नवुड ने बुलाया है। जनरल बूढ़े हैं, बीमार हैं, व्हीलचेयर पर हैं और ऑर्किड के पौधों से घिरे हुए हैं, और उन ऑर्किड्स की गंध, चैंडलर लिखते हैं, उसमें मीठास कम सड़न ज्यादा महसूस होती है।
क्या बात है, और जनरल मार्लो को जो काम सौंपते हैं वो पहली नजर में तो बड़ा सीधा सा लगता है। एक आर्थर गाइगर नाम के आदमी को रोकना है जो जनरल की छोटी बेटी कार्मेन, जो थोड़ी जंगली सी है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है।
लगता है जैसे कोई जुए का कर्ज वगैरह होगा।
हाँ, पहले यही लगता है, पर जल्दी ही पता चलता है कि मामला असल में पोर्नोग्राफी का है।
लेकिन जनरल की असली चिंता शायद कुछ और है। पैसों से ज्यादा उन्हें अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र है, और अपने लापता दामाद रस्टी रेगन की, वो कहाँ गया? जनरल उसे पसंद करते थे। यहीं से मामला उलझना शुरू होता है ना?
बिल्कुल, ये जो साधारण सा लगने वाला ब्लैकमेल केस है, ये देखते ही देखते पता नहीं कहां पहुंच जाता है। हत्या, पोर्नोग्राफी, गैंगस्टर्स, पारिवारिक रहस्य, सब कुछ एक गहरे जाल में उलझ जाता है, और मार्लो का सामना होता है जनरल की बड़ी बेटी विवियन रेगन से।
विवियन, वो भी एक अहम किरदार है।
हाँ, बहुत। वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी रहस्यमयी, और खतरनाक भी। तो ये सिर्फ किसने क्या किया कि पहेली नहीं रह जाती, ये मार्लो के लिए एक नैतिक चक्रव्यूह बन जाता है, एक इम्तिहान।
और इस चक्रव्यूह के बिल्कुल केंद्र में है फिलिप मार्लो, 38 साल का, थोड़ा थकावा सा, दुनिया देखी हुई, कुछ सिनिकल भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाला आदमी। उसका एक अपना कोड ऑफ ऑनर है। आपको क्या लगता है, यही कोड उसे बचाता है या और अकेला कर देता है इस दुनिया में?
मेरे ख्याल से दोनों बातें सच हैं। उसका वो कोड, वो जमीर, उसे सही रास्ते पर रखने की कोशिश करता है। वो उसे लालच और धमकियों के आगे आसानी से झुकने नहीं देता, लेकिन हाँ, यही कोड उसे इस भ्रष्ट दुनिया में एकदम अकेला भी खड़ा कर देता है। वो एक बाहरी आदमी है, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाता। तो उसकी यात्रा किसी बड़े बदलाव की नहीं है, बल्कि अपने उन उसूलों पर टिके रहने की एक कठिन परीक्षा है। उसे पीटा जाता है, फंसाने की कोशिश होती है, धमकियां मिलती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है।
और इस परीक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टर्नवुड बहनें कार्मेन और विवियन, जैसे नैतिक पतन के दो अलग अलग पर जुड़े हुए चेहरे हों।
बिल्कुल, कार्मेन तो जैसे बेलगाम, आधे में छांव का प्रतीक है। चांडलम उसे लगभग जानवरों जैसा दिखाते हैं, उसकी वो शिकारी मुस्कान, अंगूठा चूसने की आदत, उसमें बचपना और एक बहुत ही खतरनाक किस्म की कामुकता का अजीब सा मिश्रण है।
उसे सही गलत की कोई समझ ही नहीं लगती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पागलपन धीरे धीरे खुलता है और वो मार्लो के लिए भी एक अजीब अप्रत्याशित खतरा बन जाती है। दयनीय भी है और खतरनाक भी।
और विवियन, वो तो ज्यादा सधी हुई लगती है, ज्यादा चालाक।
हाँ, विवियन ज्यादा परिष्कृत है, दुनिया देखी हुई है। उसका भ्रष्टाचार ज्यादा सोचा समझा है, ज्यादा रणनीतिक। वो अपने परिवार का नाम बचाने के लिए और शायद खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
वो कामिन की हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है और एडी मार्स जैसे गैंगस्टर से अपने रिश्ते संभालने के बीच एक तरह से फंसी हुई है। मार्लो के साथ उसका रिश्ता भी बड़ा अजीब है,
बहुत जटिल। उसके मन में मार्लो के लिए एक कशिश भी है, शायद उसकी ईमानदारी उसे खींचती है, पर डर भी है कि मार्लो उसके राज खोल देगा। तो वो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, कभी पैसे से, कभी अपने आकर्षण से, कभी अपनी मजबूरी दिखाकर। एक तरह से देखा जाए तो वो भी हालात की शिकार है, अपने परिवार की विरासत और अपने समझौतों में जकड़ी हुई।
और इन सब के पीछे साए की तरह है एडी मार्स, शहर का बड़ा गैंगस्टर। वो मुख्य विलेन है कहानी का, पर वैसा सीधा साधा विलेन नहीं जैसा आमतौर पे होता है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्स चालाक है, सधा हुआ है, हमेशा जैसे एक कदम आगे सोचता है। वो अपराध की दुनिया का वो चेहरा है जो शायद क्लबों में मिलता है, महंगे सूट पहनता है। उसकी ताकत दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में है, खासकर स्टर्नवुड परिवार के जो राज हैं उन पर।
विवियन को ब्लैकमेल करना।
हाँ, विवियन को कारमेन के राज के बदले ब्लैकमेल करना, यही उसकी असली ताकत है, उसका असली खेल। कहानी में जो ज्यादातर हिंसा और धोखा है, उसके धागे कहीं ना कहीं उसी के हाथ में लगते हैं, एक शांत शातिर शिकारी।
किरदारों का ये जाल तो कहानी की तरह ही उलझा हुआ है, तो मार्लो इस जाल को सुलझाना शुरू कैसे करता है? वो पहली कड़ी कहां से पकड़ता है?
पहली कड़ी है आर्थर गाइगर, वही ब्लैकमेलर। मार्लो उसके घर पहुंचता है, जो एक दुर्लभ किताबों की दुकान का मुखौटा लगाए हुए है, और वहां उसे क्या मिलता है? गाइगर मरा पड़ा है, नशे में धुत नग्न कार्मिन भी वही है, और एक कैमरा है जिसकी फिल्म गायब है।
ओहो, मतलब मामला हाथ से निकल गया।
हाँ, बिल्कुल। मार्लो वहां एक अजीब सी शूरवीरता दिखाता है, कार्मेन को ढककर वहां से निकालता है। लेकिन मामला अब सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं रहा, ये हत्या और पोर्नोग्राफी तक पहुंच गया है।
और फिर चीजें और बिगड़ती जाती हैं ना, लाश गायब हो जाती है, ड्राइवर मर जाता है।
हाँ, वो तो बस शुरुआत थी, अराजकता बढ़ती जाती है। गाइगर की लाश गायब, फिर स्टर्नवुड का ड्राइवर ओवन टेलर अपनी कार समेत घाट से नीचे पानी में मरा मिलता है। फिर एक छोटा बदमाश जो ब्रॉडी सामने आता है, जिसके पास कार्मिन की वो तस्वीरें हैं।
अच्छा, तो तस्वीरें उसके पास थीं?
हाँ, मार्लो उससे भिड़ता है, फिर कार्मिन खुद पिस्टल लेकर तस्वीरें वापस लेने पहुंच जाती है, और तभी ब्रॉडी भी मारा जाता है। उसे गोली मारता है कैरल लुंडग्रेन, जो गाइगर का प्रेमी था, और वो समझता है कि ब्रॉडी ने गाइगर को मारा है।
बाप रे, एक ही कमरे में दो लाशें और कार्मिन?
हाँ, एकदम कियोस। दो लाशें, एक बेकाबू कार्मिन। मार्लो किसी तरह इस गंदगी को समेटता है, लुंडग्रेन को पकड़वाता है। पुलिस के लिए तो केस बंद हो गया, पर मार्लो के लिए नहीं।
क्यों?
क्योंकि असली सवाल अभी बाकी था।
बिल्कुल।
रस्टी रेगन कहाँ है? जनरल का सवाल तो वही था। और यहीं से कहानी एडी मार्स की तरफ मुड़ जाती है। विवेन मार्लो को बार बार रोकने की कोशिश करती है, धमकाती भी है, पर मार्लो जनरल स्टर्नवुड के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। उसे शक है कि मार्स की पत्नी मोना के रेगन के साथ भाग जाने की जो कहानी है वो झूठी है। अब मार्लो सीधा मार्स के रास्ते में आ जाता है,
यानी सीधे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया।
हाँ, और नतीजा भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मार्स का सबसे खूंखार आदमी लैश कैनिनो मार्लो पर हमला करता है। मार्लो बुरी तरह पिटता है, बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो बंधा हुआ है। और वहीं उसे मोना मार्स भी मिलती है, जिसे असल में मार्स ने ही कैद करके रखा हुआ है, ताकि वो रेगन के साथ भागने वाली कहानी चलती रहे। ये मार्लो के लिए एक बहुत ही नाजुक पल है, वो असहाय है।
फिर वो निकलता कैसे?
मार्लो मार्स उसकी मदद करती है भागने में, और फिर एक हिंसक टकराव होता है मार्लो और कैनिनो के बीच, जिसमें मार्लो कैनिनो को मार डालता है। लेकिन ये कोई हीरो वाली जीत नहीं लगती, ये बस जिंदा रहने की एक कठोर जरूरत लगती है।
तो अब मार्लो के पास सच के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। उसे आखिरकार कैसे पता चलता है कि रस्टी रेगन को असल में किसने मारा?
उसे ये एहसास होता है कि जवाब बाहर अपराध की दुनिया में नहीं मिलेगा, जवाब स्टर्नवुड परिवार के अंदर ही है। उसी आलीशान बंगले में। वो कार्मेन को एक सुनसान तेल क्षेत्र में ले जाता है निशानेबाजी के बहाने।
अच्छा, ये उसकी चाल थी।
हाँ, वो उसे उकसाता है, रेगन की हत्या का एक तरह से नाट्य रूपांतरण करवाता है, और जब कार्मेन गुस्से में उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रस्टी रेगन को मारा था महीनों पहले, क्योंकि रेगन ने उसके एवांसेस को ठुकरा दिया था, तो बंदूक खाली निकलती है। मार्लो ने खाली कारतूस वाली बंदूक दी थी उसे। कार्मेन का वो पागलपन, वो गुस्सा ही उसका कबूलनामा बन जाता है।
तो कार्मेन ने मारा था रेगन को, और एडी मार्स का कनेक्शन फिर इसमें क्या था?
एडी मार्स को ये राज पता चल गया था, और वो तब से विवियन को ब्लैकमेल कर रहा था। कार्मेन को पागलखाने और अखबारों से बचाने के बदले वो विवियन से पैसे ऐंठ रहा था। गाइगर की हत्या, ब्रॉडी की हत्या, मोना का गायब होना, ये सब मार्स की चालें थीं इस बड़े राज पर पर्दा डाले रखने और अपना फायदा उठाने के लिए।
बापरे, तो अंत में मार्लो के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है, वो सच पुलिस को बताए या छुपाए।
हाँ, यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर वो सच बताता है तो बूढ़े बीमार जनरल स्टर्नवुड शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, परिवार बिखर जाएगा, और अगर छुपाता है तो वो एक हत्या पर पर्दा डाल रहा है।
तो वो क्या चुनता है?
चुनता है एक निजी किस्म का न्याय, कह सकते हैं। वो मार्स का सामना करता है और ये साफ कर देता है कि वो सब कुछ जानता है। उसके पास शायद ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वो एक तरह का गतिरोध पैदा करता है, एक अनकहा समझौता होता है। मार्स ये सुनिश्चित करेगा कि कार्मेन को संस्थागत देखभाल मिले और ये राज दबा रहे, और बदले में मार्लो पुलिस के पास नहीं जाएगा।
यानी कोई साफ सुथरी जीत नहीं, अंत बहुत उदास सा है, सोचने पे मजबूर करने वाला है। मार्लो अपने क्लाइंट की रक्षा तो करता है, पर एक हत्या को छुपाकर वो अकेला रह जाता है अपने इस ज्ञान के बोझ के साथ, और शायद मौत के बारे में सोचता है वो, बिग स्लीप जो आखिर में सबको आनी है।
बिल्कुल, और यही उपन्यास के जो गहरे विषय हैं वो खुलकर सामने आते हैं। पहला तो भ्रष्टाचार, जो लॉस एंजलिस की हवा में जैसे घुला हुआ है। पुलिस, अपराधी, अमीर लोग, हर कोई उसमें किसी न किसी तरह लिपटा हुआ है। ये सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक भौतिक सड़न भी है, जैसे वो ग्रीन हाउस और जर्नल की हालत।
और दूसरा, मालों का वो अकेलापन, वो उस नाइट एरेंट यानी अकेले शूरवीर योद्धा की तरह है जो अपनी ईमानदारी के कोड के साथ इस गंदी मतलब भरी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहा है। उसका वो कोड ही उसकी ताकत है, और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी।
सच की प्रकृति भी एक बड़ा सवाल बन जाती है। यहाँ सच इतना कड़वा है, इतना उलझा हुआ है कि उसे छुपाना ही शायद बेहतर लगता है। ये नॉयर फिल्मों वाली भावना है ना, कि कभी कभी एक संभाला हुआ झूठ एक विनाशकारी सच से ज्यादा सुकून देता है।
और ये सब चैंडलर अपनी बेहद खास शैली में कहते हैं। वो पहले पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, तो हम पूरी दुनिया को मार्लो की नजरों से देखते हैं, उसकी वो थकी हुई थोड़ी व्यंग्यात्मक पर गहरी सोच वाली नजर से।
और भाषा, क्या कमाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो, एकदम सधी हुई, कम शब्दों में ज्यादा कहने वाली, जिसे हार्ड बॉइल्ड कहते हैं, पर साथ ही उसमें एक अजीब सी काव्यात्मकता है। जबरदस्त उपमाएं हैं, मेटाफर हैं। जैसे वो कार्मेन के बारे में लिखते हैं, वो मेरी गोद में बैठने की कोशिश कर रही थी जब मैं खड़ा था। एक लाइन में जैसे कार्मेन का पूरा चरित्र, उसकी वो सीमाओं की कमी सब सामने आ जाता है।
प्रतीक भी बहुत इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, वो ग्रीन हाउस जो अप्राकृतिकता और सड़न का प्रतीक है, शतरंज का खेल जो मार्लो के अकेलेपन और उसकी रणनीतिक सोच को दिखाता है, यहाँ तक कि मौसम भी, वो दमनकारी गर्मी जो भ्रष्टाचार और घुटन का प्रतीक है, फिर अचानक बारिश जो हिंसा या किसी कड़वे सच के सामने आने का संकेत देती है। लॉस एंजलिस शहर खुद एक किरदार बन जाता है।
हाँ, वो शहर जहाँ धूप बहुत चमकदार है और साए उतने ही गहरे, आलीशान बंगले और गंदी गलियां साथ साथ मौजूद हैं। ये माहौल कहानी को एक अजीब सा वजन और गहराई देता है।
कुछ संवाद तो ऐसे हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, जैसे मार्लो का वो कहना, भाड़ में जाएं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, शेरिफ और पुलिस चीफ, मैं एक किराए का आदमी हूँ। ये सिस्टम से उसके अलगाव को, उसकी आजादी को दिखाता है।
या अंत के पास उसका वो विचार, जब वो शायद मौत के बारे में सोच रहा है, तुम मर चुके थे, तुम गहरी नींद सो रहे थे, तुम्हें इन जैसी चीजों से कोई परेशानी नहीं थी। ये बिग स्लीप वाली थीम है, मौत जो सब बराबर कर देती है, जीवन के सारे संघर्षों को जैसे बेमानी बना देती है, एक थका हुआ सा दर्शन।
इस उपन्यास को पढ़ना वाकई एक गहरा अनुभव है। आप मार्लो की थकान महसूस करते हैं, अन्याय पर उसका गुस्सा महसूस करते हैं, और उसका वो गहरा अकेलापन भी। अंत में कोई आसान जवाब नहीं मिलता, बस एक स्थायी उदासी और कुछ नैतिक सवाल पाठक के साथ रह जाते हैं।
हाँ, ये पाठक को थोड़ा बेचैन जरूर करता है। यह हमें शायद ये सिखाता है कि दुनिया अक्सर टूटी फूटी होती है और हीरोइज्म हमेशा वैसा साफ सुथरा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी सही और गलत के बीच चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए या चीजों को संभाले रखने के लिए बहुत से समझौते करते हैं।
शायद ही यही वजह है कि ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है, इतनी रिलेटेबल लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि नैतिक अंधेरे में भी अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी, अपने जमीर की आवाज को बचाए रखना कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो सकता है।
हाँ, और चैंडलर की ये दुनिया हमें आज भी खींचती है क्योंकि वो दिखाती है कि चमकती सतह के नीचे अक्सर कितनी सड़न छिपी होती है और सच्चाई की तलाश करना अक्सर कितना खतरनाक और नैतिक रूप से जटिल सफर होता है।
तो ये सोचने वाली बात रह जाती है कि आज की दुनिया में जहाँ सिस्टम शायद और भी ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा भ्रष्ट हो गया है, क्या मार्लो जैसा एक अकेला नैतिक योद्धा टिक भी पाता या वो सिस्टम में पूरी तरह पिस जाता?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।